तो चलिए तारुफ हबीब पे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तारुफ हबीब, इसमें हम नबी सल्लम की लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। पिछले सेशन में हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी वो क्या थी कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की उम्र की कसम खाई है, यानी एक बड़ा प्यारा अंदाज़ा है, लामरुका इन नहुलफी सकरतिहिम या महून। अब यहाँ आज हम शुरू करेंगे पेज 40 से, आपके शहर की कसम खाई गई, यानी ये भी एक ऑनर है आपके लिए। तो आइए देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला अक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर यानी मक्का की, और आपको इस शहर में हलाल कर लिया गया है। सभी को पता है इसकी तफसीर का, और इस वक्त ज़रूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन मुराद क्या है इसमें कि इसमें पता ये चल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतनी ऑनर दी कि जिस शहर में आप रहे उसकी कसम खा ली, मुराद ये है कि मक्का। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वन नजमि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा, कसम है सितारे की जब वो गुरूब हुआ तुम्हारा साथी ना भटका हुआ है ना बहका हुआ है। सूरत नजम में नबी सल्लम का और वाकया मेराज का जो तस्कर है तो उसके ज़िमन में ये आयतें आती हैं। फिर इसी तरह नाम लेने की बजाय मनसब से मुखातिब करना, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युह अर्रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल आपके रब की तरफ से जो भी आप पर नाजिल किया गया है इसे पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युह नबी यु हसबुक अल्लाह, ए नबी अल्लाह आपको काफ़ी है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के साथ एक बड़ा प्यारा सा अंदाज है। आप देखिए पूरे कुरान में एक जगह भी अल्लाह ताला ने नबी को या मोहम्मद नहीं कहा, हालांकि कह सकते थे, या मूसा है या आदम है या नूह है या इब्राहिम है या मोहम्मद नहीं है। तो मनसब के साथ किसी को पुकारना ऐसे ही है ना, जैसे आप देखिए कि इवन बादशाह है कोई किसी मुल्क का, बादशाह आजकल नहीं होते, प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, तो लोग कभी भी उसका नाम नहीं लेंगे, ओ फलान, क्या कहते हैं, ओ प्रेसिडेंट ओ प्राइम मिनिस्टर है। तो ये किस्म की ऑनर है। फिर इसी तरह आपकी एक और ख़ास खूबी क्या थी कि आप पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमिनल लैल फतहज्जत बिही नाफिलतल लक असा यबसक रब्बुक मकामम महमूदा, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद भी पढ़ा करो जो कि आपके लिए जायद यानी एक्स्ट्रा इबादत है, बईद नहीं यानी ये बात दूर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद पर फाइज कर दे। तो क्या पता चला कि हम पर फर्ज नहीं, दुआ कीजिए अल्लाह हम पे नफिल है तो हम खुद इसको अपने ऊपर फर्ज कर लें, लेकिन नबी सल्लम पर ये फर्ज थी। अब देखिए कि जिनके रुतबे ज्यादा होते हैं, जिनका मुकाम आला होता है ना, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से फिर बाकी चीजें भी ज्यादा हो जाती हैं, यानी उनको दूसरों से ज्यादा करना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो आदमियों के बराबर तकलीफ होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हाल में आया कि आपको शदीद बुखार था। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज बुखार है। आपने फरमाया, अजल इन्नी उअका कमा यू अका रजुलानी मिनकुम, हाँ बेशक मुझे तनखा इतना बुखार होता है जितना तुम्हारे दो लोगों को बुखार होता है, यानी नबी सल्लम का बुखार दूसरों से दुगना होता था। और आपको पता कि ये आपके जो आखिरी बीमारी के दिन थे उसमें भी हुआ, और ये बुखारी की रिवायत 5648 है। लेकिन आपने तो कभी शोर नहीं मचाया, यानी आप बीमारी को भी बर्दाश्त कर जाते थे। फिर इसी तरह से गवाही का वसफ, अल्लाह क़यामत के दिन नबी सल्लम से गवाही दिलवाएगा, कैसे, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़कई फ़ाइज़ा जी ना मिन कुल्ली उम्मतिम बी शहीदें व जी ना बी काला हा उलाई शहीदा, भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को बुलाएंगे और तुम्हें इन गवाहों पर बतौर गवाह लाएंगे। सुन चुके हैं आप सूरह निसा में, और अल्लाह के नबी कितना इस पर रोए थे, قیامت کے دن جب گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا کرا جائے کسی کو، تو اس وقت اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کس طرح کے حال میں یہ معاملہ ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال ادھر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت بڑا سخت وقت ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت اور حفاظت کا انتظام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ مائدہ کی 67 ہے اور دوسری ہجر کی 95 ہے، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ بچانے والا ہے۔ ایسے ہی کسی کی بات سن رہی تھی تو مہنگائی اور خرچے اور اس طرح کی باتیں تھی، تو کوئی دین کی بات بتانے لیتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملکوں کا بجٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، یہ بڑے لوگوں کی سیکورٹیز ختم کر دو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ تو اپنے باڈی گارڈز کے ہاتھوں ہی مارے جاتے ہیں بیچارے لوگ، تو خرچے کم کرنے ہیں تو اپنی سیکورٹیز، اپنے باڈی گارڈ، اپنے چارٹر طیارے ختم کر دو، تو اسی سے کتنی عوام کا سانس کھل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھر اسی طرح سے ایک بڑی پیاری آپ کی ایکسٹرا خوبی کیا تھی؟ قبول شدہ دعا جو خفیہ رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت دعاہا لیمتی ہی و ان اختبعت دعوتی شفاعت لیمتی یوم القیامہ، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، اور بے شک میں نے اپنی ایک دعا کو خفیہ رکھا ہوا ہے جو کہ قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے ہوگی۔ کون چھپا چھپا کے چیزیں آپ کے لیے رکھتا ہے جس کو آپ سے پیار ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں سب کھا لیں گے، لیکن ماں کہے گی وہ بچہ گھر نہیں، اس کا کھانا رکھ لو۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے پہلے رکھیں گی، اچھے شوہر بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھیں گے۔ محبت جس میں بڑی ہوتی ہے نا، وہ کہنا نہیں پڑتا، وہ بتانا نہیں پڑتا، بچا بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے موقع آئے ہوں گے کہ آپ کو دعا کی ضرورت تھی، بیٹا ہی مانگ لیتے، اللہ ایک تو جوان بیٹا کر دے، میرے بڑھاپے کا سہارا۔ تو ہے جن کو اللہ نے کوئی بڑا غم دیا ہوتا ہے نا امت کا، ان کو اپنی ذات کے غم بڑے نہیں لگتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑی بڑی چیزیں وہ دین کے لیے سنبھال کے رکھتے۔ دیکھیے اس درجے پہ اللہ آپ کو لے آئے، بس یہ دعا کیا کرے، اس سے خوبصورت زندگی ہے کوئی نہیں، باقی تو ایک بیگار ہے جو سب ہم کاٹ رہے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر ایک اور آپ کی بڑی خوبی، اور وہ کیا تھی؟ ریاض الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ بخاری کی روایت ہے 1195۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ دیکھنے میں دنیا کی ہے، لیکن اصل میں یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر اللہ اپنے گھر لے جائے اور مکہ سے مدینہ جائے مسجد نبوی میں، تو اس جگہ پہ نفل پڑھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس طرح آپ کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو ایک خاص مقام دیا جائے گا۔ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامتی ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تخت لوائی وانا افضل من تنشق عنہ الارض ولا فخرا۔ میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں، آدم سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ اب کچھ باتیں اپنی بتانی پڑتی ہیں نا، اب اگر اللہ کے نبی نہ بتاتے تو کون بتاتا؟ تو آپ کو بتانے میں ایک قسم کی لاج آ رہی ہے کہ لوگ کہیں گے اپنے منہ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ نیگیٹو ذہن سے آپ کی بات سنتے ہیں نا، تو یہ سوچتے ہیں یہ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو اپنی چیزیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو دیکھو اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ آج کوئی چیز خریدنے جاؤ تو آپ جا کے ریویوز پڑھتے ہیں، واٹ پیپل سیز اباؤٹ اس، ताकि लोगों की बातें सुनकर तुम मान जाओ। अब फीडबैक कोई देता है और अगर दूसरे से शेयर किया जाए तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि आपकी तारीफ है, मतलब ये है कि दूसरों ने ऐसा सोचा या कहा तो फिर ये अच्छा ही होगा, तो आप भी करिए। तो नीयत पे डिपेंड करता है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने अपनी ये खूबियां खुद बताई तो ये जरूरत थी बताने की। फिर इसके बाद एक और आपकी खूबी, वसीले और फजीलत का मुकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजान सुनी और कहा, आप मेरे से दोहरा लें, ये खूबसूरत सी दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाजिह दावत इत्ताम वस्सलातिल काइमा आती मोहम्मदा निल वसीलता वल फदीलता वबअथु मकामन महमूदा निल्लज़ी वअत्तहु। ए अल्लाह, इस कामिल पुकार और कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और इनको मुकामे महमूद पर पहुंचा जिसका तूने इनसे वादा किया। कयामत के दिन उसके लिए मेरी शिफात वाजिब होगी। तो ये दुआ मांगते हैं जब आप अजान होती है तो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ये मुकाम किसी को नहीं दिया जाएगा जो कि नबी को दिया जाएगा, मुकामे महमूद कहा जाता। अब ये क्या है, इसकी इस वक्त जरूरत नहीं डिटेल्स की। फिर नहरे कौसर, अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। अब है किसी की बीवी कौसर, किसी की हमारी फैमिली में ना, तो वो लोग इस आयत को उस रंग में लेते हैं। अब आप कहेंगे क्या है भाई, यहाँ की कौसर आपको दी, वहां की कौसर नबी को दी। तो बहरहाल नबी सल्लम को उस हौजे कौसर की तरफ इशारा किया गया, जिसका अगली हदीस में जिक्र सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाए, बेइनमा अना असीर फिल जन्नति इजा अना बिना हरिन हाफताहु किबाबुद्दुर्रिल मुजव्वफ قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو تينه مسك أصفر। मेराज की रात जब मैं जन्नत में चल रहा था, इस दौरान एक नहर दिखाई दी जिसके किनारों पर खौलदार मोतियों के कुबे यानी गुंबद थे। मैंने कहा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो वो कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता की, इसकी मट्टी या इसकी खुशबू मुश्क जैसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक और हदीस से आपको और भी खूबियां दिखेंगी, क्या फरमाया, फइन्नहु नहरुम वअदनीही रब्बी अज्जा वजल्ला अलैही खैरुन कसीरुन वहुवा खौदुन तरिदु अलैही उम्मती यौमल कियामा आनियतुहु अददुन नुजूम فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّي إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ। बेशक वो कौसर एक नहर है जिसका मेरे रब अज़्ज़ वजल ने मुझसे वादा किया है, इसमें बहुत सी खूबियां हैं और क़यामत के दिन मेरे उम्मती इस खौस का पानी पीने के लिए आएंगे। इस खौस के इतने प्याले हैं जितने आसमान के तारे, इनमें से एक शख्स को वहां से भगा दिया जाएगा तो मैं कहूंगा, मेरे रब, बेशक ये शख्स मेरी उम्मत में से है। तो वो फरमाएगा, तुझे मालूम नहीं कि उन्होंने तेरे बाद क्या क्या नई बातें घड़ी थी। क्या कहते हैं इन बातों को, बेदा। अब देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है 894, तो इससे क्या पता चला कि दीन के अंदर नए नए काम करने या उनको डिस्कवर करने या हैं तो उस पर अमल करने से बचने की जरूरत है। थोड़ा हो, साफ सुथरा हो, खरा हो, इसलिए दीन के किसी काम के करने से पहले उसकी सेहत को चेक कीजिए। फिर आपकी एक और खूबी, कयामत के दिन तमाम अंबिया के इमाम और खतीब होंगे आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा कान यौमुल कयामती कुंतु इमामन नबीजीना व खतीबहुम व साहिब शफाअतिहिम गैर फख्रिन। मैं क़यामत के दिन बगैर किसी फख्र के तमाम अंबिया का इमाम और खतीब और इनकी शिफात करने वाला होंगे। सुभान अल्लाह, साहिब शिफात होंगे आप, ये है खूबसूरत सी आपकी शान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्रु वावलु शाफी वावलु मुशफ़ैन, और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, और सबसे पहले मैं शिफात करने वाला होऊंगा, और सबसे पहले मेरी शिफात कबूल की जाएगी। यहां देखिए शाफे का क्या मानी है, शाफिन फाइल शिफात करने वाला। अब शिफात तो कोई भी कर दे, सिफारिश तो कोई भी करे, लेकिन शर्त तो नहीं ना कि पूरी हो। तो अल्लाह के नबी का एक टाइटल शाफे, जैसे आप कहते हैं शाफे मख्शर, लेकिन एक है मुशफ़ा, मुफाल के वजन पे मफूल है, यानी फिर जिसकी कबूल भी की जाएगी। असल बात तो फिर ये है ना, फिर हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं इन्ना नास यसीरून यौम अल क़ियामती जुसन जुसान, यानी अगर रोक जाएंगे तो जुसा वरना जुसन, और फिर कुल उम्मतिन तत बऊ नबी यहा यकूलूना या फुलानु इश्फा हत्ता तंतही शफात इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजालिका यौम यबअसुहुल यबअसुहुल्लाहुल मकामल महमूद। बेशक क़्यामत के दिन उम्मतें गिरोह दर गिरोह चलेंगी, हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी और अम्बिया से कहेगी कि फलां शिफात करो, मगर वो सब ही इनकार कर देंगे। आखिर शिफात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर होंगे। तो यही है वो दिन जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो इस हदीस में आया? ये जन्नत या जहन्नुम में जाने की सिफारिश नहीं है, शिफात उज़्मा, शिफात कुबरा जिसको कह लें, और दूसरी शिफात सुगरा, हिसाब शुरू करने की सिफारिश है। क्यामत का दिन होगा, लोग खड़े हैं तो खड़े हैं तो खड़े हैं, किसी को भी पता नहीं आगे क्या होगा। एक नबी से लेके दूसरे नबी तीसरे नबी के पास जाएंगे कि अल्लाह से कहिए कि हिसाब शुरू कर दें, लेकिन अल्लाह ताला हिसाब नहीं शुरू करे तो फिर हमारे नबी जाएंगे और वहां जाकर फिर अल्लाह के आगे सजदे में जाएंगे और वहां अल्लाह की कोई तारीफ करेंगे। ये जो मुकाम महमूद एक ऑनर भी है, एक रैंक भी है, एक टाइटल भी है, वल्लाहु आलम ये कोई मुकाम भी है, जैसे एक खड़ा कर दिया जाता है ना ऊंची चीज पे। हम नहीं कुछ जानते, बस जो कह दिया अल्लाह के नबी ने हम उसको मानने पे तैयार हैं। तो क्या पता चला कि आपको ऐसे मौके पे अल्लाह सुबहान तआला खास मौका देगा कि जिसके ऊपर वो सारी चीजों को लेकर चलेंगे और ये मुकाम नबी को मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यामत के दिन सिर्फ आपका नसब बाकी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु सबबिम व नसबिम मुनक़तियुन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। क़ियामत के दिन मेरे रिश्ते और मेरे नसब के सिवा तमाम रिश्ते और नसब मुनक़ते हो जाएंगे। कितना अच्छा लगता है सोचकर। आप देखिए दुनिया में हम जिन रिश्तों नातों के लिए कितना खपते हैं तपते हैं। तो यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अभी आयत पढ़ते हैं ना, क़यामत के दिन सब रिश्ते एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। एक जगह कुरान में आता है सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे इल्लल मुत्तकून, तकवा की बुनियाद के जो रिश्ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते उस दिन भी कायम रहेंगे, ये आपकी तख़सीस है। फिर आपकी खूबियों में एक और खूबी क्या है, सबसे पहले पुल सरात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। आपने फरमाया फ़अकूनु अव्वला मैं युजीज़ु व दुआ रसूली यौमइज़िन अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम। मैं क़यामत के दिन सबसे पहले पुल सरात पार करने वाला होऊंगा और इस दिन तमाम रसूलों की दुआ होगी, ए अल्लाह सलामती 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 अल्लाहुम्मा सल्लिम। आप देखिए कि वह मिन को मिल्ला वारी दुखा, सूरत मरियम में क्या आता है, तुम में से हर एक को पुल सरात के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो क़यामत के दिन पुल सरात से गुजरते वक्त जुबान पे दुआ होगी, वो क्या होगी, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम के अल्लाह सलामत। क्या हकीकत में हम उसकी फिक्र करते। अब देखिए आज दुनिया में अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख कोई तकलीफ आ जाए, शोर मचा देंगे। कितने लोग हैं जो हमारी बातें सुनने वाले भी होंगे, मान जाएंगे, हमें तकलीफ से बचा भी लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए तो हम नहीं समझ पाते। और ये वो चीजें हैं जो हकीकत में हमें अपने दामन में झांकने की दावत देती हैं। क्या हम अपने प्यारे नबी के लाए हुए इस दीन पे इतना गौर फिक्र करते हैं? तो आपका ये तोहफा जो किताब की सूरत में हमें मिला, इस पे हमारा तदब्बुर है। फिर एक और आपकी खूबी क्या होगी कि आपकी उम्मत की कसरत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अक्सरु लंबियाई तबई यौमल कियामती व अना अव्वलु मन यक्रउ बाबल जन्ना। अरबी पढ़ने से समझ आती? नीचे ना देखें तो अरबी आती, और गौर किया करें, पहले उर्दू में नीचे ना देखा करें। जब मैं अरबी पढ़ती हूँ ना तो देखा करें भला इसमें क्या आता है। मसलन अना, हम सबको बताया ना, मैं, अक्सर का लफ्ज उर्दू में आता है, अंबिया भी आता है, यौम भी आता है, कियामत भी आता है, वाना अव्वलु मन, सिर्फ एक लफ्ज है यकरव। और यकरव किधर है भला कुरान में? अलकारियतुम अलकारिय वमा अदराकम अलकारी, खटखटाने वाली। तो देखिए पूरी बात तो आपको समझ आ गई, बाप का लफ्ज भी आता है, जन्नत आता है। हम अल्लाह का इस पे जितना शुक्र अदा करें कि उर्दू और अरबी का 90% हिस्सा सेम है। ये जो हम फर फर उर्दू तर्जमे याद कर लेते हैं ना वर्ड टू वर्ड, और अगर हमने नहीं करना तो कोई नहीं करेगा, ये भी बता दो आपको। इवन फारसी, देखिए उर्दू अरबी और फारसी ये एक किस्म की जबानें समझी जाती हैं, हालांकि फारसी भी फर्क है। अलिफ बा ता सा में जितना आपस में कनेक्शन उर्दू और अरबी में, उतना किसी और जुबान में नहीं। बड़ी बात है जो इंग्लिश में लोग लफ्जी तर्जमा याद करते हैं, बड़ी बात है जो फ्रेंच में करते हैं, जो नोश्क में करते हैं। जैसे इंग्लिश के साथ ए बी सी डी सी के सारे हैं ना, स्पेनिश स्वीडन फलां फलां, ये सारी लैंग्वेजेस में बेसिक तो इंग्लिश है ना, ए बी सी है। इस तरह उर्दू और अरबी में दोनों में अलिफ बा ता सा जी, पूरा दिल लगा के अरबी याद कर लीजिए, वल्लाही इस दौलत को आप अपने सीने की ठंडक बना लें, अमल तो अल्लाह करवाता भी रहेगा। और जब कुरान जिंदा होता है, जब नमाज जिंदा होती है, फिर ही पता चलता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो अरबी के लफ्जों पे गौर करने के लिए सारी बात थी, तर्जमा सुन लीजिए। क्यामत के दिन सब नबियों की निस्बत ज्यादा लोग मेरे ताबे होंगे, और मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। ये रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में 484 है। तो गोया कि हमारे नबी की दुनिया में भी शान है और वहां भी शान होगी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी के खसाइस, और अगर आप गिन रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि 15 से ज्यादा खसाइस हम गिन चुके हैं, मैंने गिने नहीं है वैसे, ये बाद में काउंट कीजिएगा। तो अगली खूबी, एक अलग चीज क्या थी, आपके ऊपर नेमत मुकम्मल की गई, यानी वो नेमत जो अंबिया कराम पे शुरू हुई थी हजरत आदम और नूह से लेकर, वो अल्लाह के नबी पर दीन इस्लाम की सूरत में तमाम हुई। कहाँ लिखा है? अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। कौन सी आयत है? सूरत माईदा की आयत नंबर 3 है। तो गोया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला के नेमत पूरी हुई। हमें कितना को एहसास होता है इस बात का कि अल्लाह के नबी के उम्मती हैं और हमारे ऊपर अल्लाह नेमतें तमाम कर रहा है। कभी तो खुद को सोच के बंदा कहे कि अगर मैं इस वक्त इसको ना पढ़ रहा होता, अगर ये कुरान ना पढ़ रहा होता, अगर मेरा इसमें मामला ना होता तो मैं क्या होती। हम सब सर सजदे में रखे, कम अज कम दिन में एक दफा शऊर के साथ शुक्र का सजदा किया करें कि अल्लाह पहली बात है इंसान बनाया, सही सालम बनाया, जिस्म का कोई हिस्सा झड़ा होता तो क्या कर लेते, फिर इस्लाम दिया, फिर शऊर दिया, फिर अपने कुरान के लिए चुन लिया। आज भी आपकी दोस्तों में कितने नहीं चुने हुए, आज आपकी फैमिली में कितने नहीं चुने हुए, हमारे कल्चर को देखिए कितने लोग हैं जो इन चीजों से अलग हैं। अल्लाह ने दिया, और फिर उसके बाद देखिए कि अल्लाह ने हमें इस कुरान के लिए यहां बिठा दिया लाकर। कुछ भी करते दुनिया में कोई फारिग बैठे ना, आपकी हुकूमत आपको फारिग बैठने देती है ना दुनिया वाले बैठने देते हैं, कुछ ना कुछ तो कोई कर ही रहा होगा। जरूरत इस बात की कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना करें, इसलिए दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप देखिए जो जितना शुक्र गुजार होगा ना किसी भी नेमत पे, यानी किसी चीज को लेगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी नेमत है, वो उतना उसका हक भी तो अदा करेगा ना। बस इस पे दिल अजीब हो गया, कल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम वतमम तो अलैकुम नेमती व रदी तो लकुम अल इस्लाम दीना। आप देखिए कि हमेशा किसी भी चीज की तकमील की बड़ी खुशी होती है। जब हमने यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने हसाइस पढ़े? 16 पढ़े, 16 पॉइंट्स पढ़े हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के। हम सब क्या करें, हमसे क्या तकाजा है इसके ऊपर, कोई आप में से बताएं, हम भी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। देखिए कुछ चीजें हमारे इख्तियार में है, कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته